Sociokulturalnya mana Western స్థాపితం మనం భూతలేశ్వరంలో ఒక కథమయ్యే అందరాతి స్వతంత్రం నమో విష్ణు పాదాయ విష్ణు పృష్టాయ భూతల సుమతే భక్తిరాం స్వామిని తుమ్మి నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి కుచారి మనే విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాపు శివాసాది భౌతృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. लास्ट वीक हमने प्लेन पायलट का स्टोरी देखा था हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. ये स्टोरी देखी थी हमने एक अमेरिकन प्लेन पायलट की स्टोरी जिसको कि उसके री इंकारनेशन के बारे में याद आता था याद आया था.
अब तो जी एक बार रिवाइज करवा ले कि हमने क्या क्या सीखा था अगर हम जो भी ज्वाइन हुए हैं अगर उनको पूछे हैं हम कैसा था.
लास्ट क्लास में कौन कौन था वैसे जो जो थे उनको याद हो गया.
मुकेश को थे सोनिका माता जी थे.
ओके पिछली क्लास में लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था कुछ बता सकते हैं एक एक पॉइंट्स अगर किसी को कुछ याद हो. अनम्यूट करके बता सकते हैं. मेरी आवाज सब लोगों तक पहुंच रही है?
यस प्रभु.
एक्चुअली डिवोटीज का दर्शन नहीं मिलता है. सभी अपना अपना कैमरा बंद करके बैठते हैं. वीडियो भी बंद ऑडियो भी बंद तो पता कैसे चलेगा कि कौन कौन कहाँ पे है और कौन सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं. अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी लोग. कम से कम डिवोटीज का दर्शन मिलेगा. जिनका भी इंटरनेट का समस्या नहीं अपना वीडियो ऑन करके रखिए. जयदीप प्रभु किरण माता जी शुभ शुभ पाठक प्रभु रितु माता जी अपना वीडियो ऑन करिए. और कौन कौन है? रोहिणी माता जी हैं. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरे कृष्णा. जयदीप प्रभु
हरे कृष्णा प्रभु.
हाँ वीडियो ऑन हो गया. वीडियो ऑन करके रखिए जिससे पता चलेगा कि सब लोग सुन रहे हैं. नहीं तो पता ही नहीं होता है. पता नहीं लैब मोबाइल चालू करके फिर कहीं चले जाते हैं कुछ कैसे पता चलेगा कि कोई सुन रहे हैं कि नहीं. किरण माता जी रोहिणी माता जी हीना माता जी तीनों लोग अपना वीडियो चालू करिए. रितु माता जी सुगंध पाठक साहिल प्रकाश अपना वीडियो ऑन करिए सभी लोग.
एक मैसेज आया है कि वीडियो रिकनेक्टिंग हो रहा है अगर खोलने में.
नहीं सबके साथ इंटरनेट का समस्या नहीं होगा. कई बार इंटरनेट का समस्या का हम एक्सक्यूज बनाते हैं. हमें नहीं चालू करना रहता इसलिए इंटरनेट का कनेक्शन का बताते हैं. हो सकता कभी हो किसी किसी को परंतु आजकल पूरे इंडिया में इंटरनेट इतना वीक नहीं है कि किसी को भी नहीं पता चले. ओके ओके अभी ऑन रखिएगा. ऐसा नहीं कि एक दो दो पांच मिनट बाद फिर से ऑफ कर दिया. मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से क्लास सुने और जब वीडियो चालू होता है तो पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास चल रहा है, हमारा एंड्रॉयड फोन पे बात भी चल रहा है किसी से। जब वीडियो ऑन नहीं होता है तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। अभी भी दो लोग बाकी हैं, साहिल प्रकाश प्रभु, रोहिणी माता जी ने वीडियो ऑन नहीं किया अभी। ओके ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में से किसी को कुछ याद है अगर तो बताइए, लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था। ओके, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था आत्मा का ज्ञान, और उसमें से कुछ कुछ हमने सेक्शन देखे थे कि लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं। उसमें हमने ये भी देखा था कि आत्मा शरीर के सारे केमिकल्स का प्राइस कितना होता है, और आत्मा कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से कार के अंदर ड्राइवर आवश्यक है, उसी प्रकार से शरीर में आत्मा आवश्यक है। और फिर ऐसा करते करते हमने फिर ये एक देखा था रीइंकार्नेशन का स्टोरी, पुनर्जन्म का ये एक डिस्क्रिप्शन, अमेरिका के प्लेन पायलट का डिस्क्रिप्शन हमने देखा था। और इस डिस्क्रिप्शन के बाद, इस डिस्क्रिप्शन के पहले हमने ये चेक किया था कि किस प्रकार से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने खोज किया था बहुत सारे तरीकों का, जिसमें व्यक्ति इन सब वस्तुओं को आत्मा की उपस्थिति पहचानता है और देखता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी आज कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या बताते हैं, पुनर्जन्म या आत्मा के बारे में क्या बताते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी तरह से हमेशा इस संसार में एग्जिस्ट करूंगा, हमेशा इस संसार में रहूंगा। इसी तरह से जॉन एडम्स एक फेमस साइंटिस्ट थे, वो बताते हैं कि जिन भी आत्माओं ने भगवान के खिलाफ रिवोल्ट किया, रिवोल्ट मतलब भगवान से विद्रोह किया, उनको इस संसार में पशु, पक्षियां, रेप्टाइल्स इनके रूप में इस संसार में रहते हैं। इसी तरह से सोक्रेट्स, अरिस्टोटल के गुरु हैं, ये बताते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से हम जी सकते हैं, और मृत्यु के बाद का जीवन के ऊपर भी मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके बाद ये स्टोरी डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने की थी, जो ये शुक्ला की स्टोरी है। शुक्ला एक 4 साल की छोटी बच्ची थी, और उसको वो एक छोटी बच्ची थी तो अपने गोदी में एक गुड़िया खिलाती रहती थी और बोलते थे कि ये मेरी बेटी है। किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या बात कर रही है, पर बाद में जब शुक्ला पूरी बताने लगी कि मैं तो उस गांव में रहती थी, भाटापारा में रहती थी और इस तरह से, तो उसके फैमिली वालों ने सोचा कि इसको चेक करना चाहिए। तो उसको लेके जाते हैं भाटापारा, और जब वहां जाते हैं तो शुक्ला आगे आगे अपनी फैमिली वालों को बताती है कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, 5 साल की बच्ची, और एकदम अपने अविधान चक्रवर्ती अपने ससुर के घर पे पहुंच जाती है। ससुर को देख के वो अपना सिर नीचे झुका लेती है, जैसे कि बहू ससुर को देख के अपना सिर झुकाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद फिर वो अपने पुराना घर पहचान लेती है कि उसका घर कहाँ पे था, उसके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, डॉटर सबको पहचान जाती है, अपने पति को पहचान जाती है अविधान चक्रवर्ती, उनके निक नेम पता होते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ के निक नेम पता होते हैं, सब कुछ उसको पता होता है। तो इस केस के लिए डॉक्टर इयान स्टीवेंसन को जब बुलाया गया था तो उन्होंने बहुत सारे केसेस निकाले, बहुत सारी स्टडी की, परंतु उन्होंने फाइनली यही बताया कि ये इस केस को तभी समझाया जा सकता है जब पुनर्जन्म को हम स्वीकार करें, कि ये जो छोटी बेटी है ये पुनर्जन्म में उस घर की बहू थी, पिछले जन्म में उस घर की बहू थी और अभी मृत्यु को प्राप्त हो गई है और फिर इसने यहाँ पे जन्म लिया। उसकी बेटी भी थी जिसको वो गुड़िया समझ के खिलाते थे, वो बेटी एक्चुअली बहुत उम्र की हो गई थी, उस बेटी की उम्र लगभग 20 साल के लगभग थी और ये उसको अपनी बेटी मानती थी। तो इस प्रकार से रीइंकार्नेशन से आत्मा के बारे में पता चलता है। अभी हम देखेंगे कि पुनर्जन्म का क्या विज्ञान है, पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों होता है। बहुत सारे धर्मों में, सभी धर्मों में ऑलमोस्ट पुनर्जन्म को माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी वो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में पहले एक्चुअली था राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में बाइबल में से बहुत सारे चीजों को बदला गया, जिसके कारण से बाइबल में पुनर्जन्म को भी अल्टर किया गया, परंतु सनातन धर्म में तो पुनर्जन्म क्लियरली डिफाइन किया जाता है। मृत्यु के समय क्या होता है ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो हम सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, वही विचार, वही स्टेट हम प्राप्त करते हैं। एक वीडियो है कि किस प्रकार से सोच के किस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है पशु योनि में, मनुष्य योनि में, उसके ऊपर एक वीडियो है। मैं जस्ट उस वीडियो को चालू करके उसके बाद शेयर करता हूँ। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम सभी अलग अलग योनि से होके आए हैं। अभी फिलहाल हमारी मनुष्य योनि है, परंतु पहले बहुत अलग अलग योनि से हम होके आए, और बाद में भी हमारी बहुत अलग अलग योनि होना पॉसिबल है। योनि होगा ऑब्वियसली, पॉसिबल नहीं है, अवश्य होगा। तो इस वीडियो को देख के हम समझना चाहिए कि हम भी बहुत सारे अलग अलग जन्मों में अलग अलग पशु बन के आए हैं, पशु पक्षी मनुष्य अलग अलग चीजें प्राप्त की, और ये जन्म जो है ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। अगर इस जन्म को हमने ठीक से उपयोग नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन हमारे पास से फिर से चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से हमें इस जीवन में जीना चाहिए कि हमें करना क्या है वास्तविकता। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या होता है जीवन में, और वो पूरा जीवन जीते जाते हैं और इवेंचुअली बिना पता किए इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु के समय वास्तविकता में अगर देखा जाए, जिस प्रकार से मरते समय उसने उसके मन में जो इच्छाएं हैं, मरते समय उसके मन में जो भी इच्छाएं आती है उसके आधार पर उसको नया शरीर मिलता है। भगवद गीता में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लास्ट थॉट। मरते व्यक्ति का अंतिम विचार जो होता है वही उसका अगला डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। अंतिम विचार वही होता है जिसको उसने जिंदगी भर कल्टिवेट किया है, जिससे वो सबसे ज्यादा अटैच रहा हो लाइफ टाइम, वही विचार अंत में उसको आएगा। तो कोई ऐसा भी नहीं सोच सकते कि लाइफ टाइम वो पाप करेगा और लास्ट में वो भगवान को याद करेगा, क्योंकि वो विचार नहीं आएगा अगर उसने जिंदगी भर उसको कल्टीवेट नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक व्यक्ति ऐसे ही उसने अपने बेटों का नाम रखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यही सोच के उसने नाम रखा कि जब मृत्यु होगी तो मैं इनमें से किसी का भी नाम लूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। इसलिए उसने चारों बेटों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रख दिया। और अभी जब वो ये मरने वाला हुआ तो उसने चारों बेटों को बुलाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उसकी एक किराने की दुकान थी, तो सबके सब बेटे दौड़ते हुए आ गए कि पिताजी क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बोला, अरे अगर तुम सभी लोग यहाँ पे हो तो दुकान में कौन है, ऐसा बोल के मर गया वो। तो इस प्रकार से हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ भी जिंदगी भर कुछ भी करेंगे और मरते समय हम भगवान का नाम याद कर लें। अगर जिंदगी भर प्रयास नहीं किया है तो वो याद आने वाला नहीं है कभी भी। इसलिए भगवद गीता बताता है कि मृत्यु मृत्यु के समय हमें प्रयास करना चाहिए, जिंदगी भर प्रयास करना चाहिए कि भगवान को याद करें, जिससे कि मृत्यु के समय हम उनका स्मरण कर सकें। इसके बाद आता है, किस आधार पर आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है, कौन सा सिद्धांत इसमें लागू होता है। जैसे ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि जो हम मृत्यु समय शरीर त्याग करते समय जो सोचते हैं वो विचार जन्म लेता है, या हमने जिंदगी भर जिस चीज को कल्टीवेट किया है उसी तरह से हमारा अंतिम विचार होगा, उसी तरह से हमारा अगला शरीर होगा। जैसे ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके भाव के आधार पर इनको अगला शरीर मिलेगा। जैसे ये बहुत गुस्सैल होते हैं, और जो बहुत एडवेंचरस होते हैं, जो बहुत गुस्से में रहते हैं, तो व्यक्ति का जैसा भाव है उसके आधार पर उसको अगला शरीर मिलेगा। दो चीजों के आधार पे उनको अगला शरीर मिलता है, पहला तो मन में इच्छा, मन में क्या इच्छा हो रही है, और दूसरा उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा है कि नहीं। पैसा मतलब अच्छे कर्म और खराब कर्म, अच्छे कर्म इसमें पैसे के जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें अमेरिका जाना है परंतु हमारे बैंक अकाउंट में केवल 10,000 रुपये ही है, तो हमें 10,000 रुपये में अमेरिका की जगह पे कोई मॉरीशस छोड़ देगा, अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे मन में अगर कुछ करने की इच्छा है, हो सकता है हमें मनुष्य बनने की इच्छा हो परंतु हमारे कर्म इतने नहीं कि हम मनुष्य बन पाए, तो फिर हमें मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। तो दोनों चीजों की जरूरत है। कर्म जो है यहाँ पे बैंक बैलेंस के जैसा है, मन में इच्छा मतलब हम वो योनि प्राप्त करना चाहते हैं परंतु हमारे बैंक में उतना पैसा होना चाहिए, उतने पुण्य कर्म होना चाहिए कि हम उस योनि को प्राप्त कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य बनना चाहता है, किसी घर में पर्टिकुलर किसी घर में मनुष्य बनना चाहता है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं मर के इसी घर में जन्म लेना चाहता हूँ, परंतु अगर उनके पास पुण्य का अकाउंट इतना नहीं है कि वो उसी घर में जन्म ले सकें, मतलब मनुष्य बन के जन्म ले सकें, तो वो उसी घर में फिर कुत्ता बिल्ली छिपकली बन के भी जन्म ले सकते हैं। तो ये दो कारण है जिसके कारण, दो फैक्टर है जिसके कारण अगला जन्म डिसाइड होता है, मन की इच्छाएं और अच्छा और खराब कर्म। अगर हम भगवान के नाम को इग्नोर कर, भगवान के नियमों को इग्नोर करते हैं और पाप का जीवन जीते हैं अपने मन और इंद्रियों के द्वारा, तो हम पशु शरीर की तरफ जाते हैं। जैसे जो मांस खाता है उसका अगला जन्म मांसाहारी जानवर के समान होता है, जिससे उसको आसानी से मांस खाने मिल सके। भगवान नेचर भी बोलता है कि आप ऑलरेडी मांस खाना आपको इतना अच्छा लगता है, तो आपको जानवर बनाना चाहिए, शेर बनाना चाहिए, जिससे आप अच्छे से मांस खा सको। इसी तरह से जो ज्यादा सोना चाहते हैं, बहुत सोते रहते हैं, वो अगले जन्म में वो बन जाते हैं, तो पोलर बियर 6 महीने तक सोते रहते हैं। इसी प्रकार से जिसको अंग प्रदर्शन की बहुत इच्छा होती है, एक्सपोज बॉडी एक्सपोज करने की बहुत इच्छा होती है, उनको अगले जन्म में पेड़ बना दिया जाता है, जिससे कि उनको कपड़े ही नहीं पहनने पड़े। तो इस तरह से नेचर कार्य करता है, हमारी जो इच्छाएं होंगी उसके आधार पे हमें शरीर मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक ऐसा जंक्शन है जहां अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करें और रिस्पॉन्सिबल जीवन जिए तो हम आगे जा सकते हैं, परंतु अगर हम पाप कर्म में लगते हैं तो ये 4 प्रकार के पाप कर्म है। एक तो मांस भक्षण, मीट ईटिंग, दूसरा पाप कर्म है इंटॉक्सिकेशन, नशा, तीसरा पाप कर्म है जुआ खेलना, गैम्बलिंग। अमेरिका में एक सिटी है जो जुआ के लिए बसाई गई है, लॉस वेगस नाम से, वहां पे लोग जाते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि वहां से कोई जीत के नहीं आता, क्योंकि जो जीतता है वो फिर से पैसे लगा देता है तो हार जाता है। इसके बाद अगला है इलिसिट सेक्स, जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं और लगातार उसमें डूबे रहते हैं। तो ये चार पाप कर्म है, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। अगर कोई इन पाप कर्मों को करता है तो उसका अगला जन्म पशु योनि में मिलेगा। तो यहाँ पे धर्म के चार सिद्धांत भी समझना होगा। वास्तविकता में धर्म के चार खंभे होते हैं, सत्य, दया, स्वच्छता और तपस्या। और ये जो चार सिद्धांत हमने डिस्कस किए, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये धर्म के उन चार सिद्धांतों को ब्रेक करते हैं। जैसे सत्य को ब्रेक किया जाता है गैम्बलिंग के द्वारा, स्वच्छता को ब्रेक किया जाता है इलिसिट सेक्स के द्वारा, तपह को ब्रेक किया जाता है इंटॉक्सिकेशन के द्वारा, और दया को ब्रेक किया जाता है मीट ईटिंग के द्वारा। तो सर, धर्म के चार खम्भों को अगर ब्रेक करते हैं तो हम पशु योनि को प्राप्त होते हैं। परंतु अगर हम अपना जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक नियम चार नियम इसमें बताए गए हैं। तपस्या, तपस्या का मतलब आगे कुछ बड़ी हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए पहले कुछ रिस्ट्रेंट करना। तपस्या ऐसा नहीं कि जंगल में जाके की जाती है। तपस्या मतलब इवन हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में कई बार हमारे माता पिता बोलते हैं बेटा अभी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो बाद में अच्छा रहेगा, जबकि हमारे साथ वाले कई लोग होते हैं जो उस समय खेलते रहते हैं तो हमें उस समय लगता है कि अरे ये लोग तो इतना मजा कर रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि फ्यूचर में वो लोग फिर अच्छा कैरियर नहीं बना पाते। तो उस समय कोई भी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए जो हम वॉलंटरी कठिनाई को स्वीकार करते हैं उसको तपस्या बोला जाता है। दूसरा है सिद्धांत भगवान की भजन, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब भगवान ऐसे कार्य जिससे भगवान को खुश किया जा सके, भगवान को अपना समय देना, भगवान का पूजन करना, भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। तीसरा आता है शास्त्र का अध्ययन, नॉलेज, शास्त्रों को प्राप्त करना, भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेदों से ये सीखना कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। चौथा आता है अच्छे लोगों का संग, अच्छे भक्तों का संग, एसोसिएशन विद सेंटली पीपल, अच्छे लोगों का संग जो कि भगवान के नियमों को पालन करने के लिए जीते हैं। ये चार चीजों को अगर हम पालन करते हैं तो हम धर्म के खम्भों को पालन करते हैं, और इनको पालन करके हम धीरे धीरे ये जो पतित अवस्था है इससे ऊपर की अवस्था तक जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में नीचे की सीढ़ियों में व्यक्ति संसार में डूबा हुआ है, संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा हुआ है और डूबा हुआ है। और व्यक्ति को जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो आध्यात्मिक गुरु उसको वेद अध्ययन, तपस्या, इंद्रिय नियंत्रण ये सब सिखाते हैं और फाइनली वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक पोयम है, जो पोयम के द्वारा बताया जाता है कि भगवान और आत्मा में क्या अंतर है, सोल एंड गॉड दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो ये पोयम इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स, हम भगवान नहीं है परंतु हम भगवान के हैं। तो हम भगवत्ता को भगवान नहीं बन सकते परंतु भगवान के भक्त बन सकते हैं। I am a tiny jiva, not the ultimate god, but a tiny part and parcel servant of the Lord. Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of six opulences. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I am only Brahman, but Krishna is for Brahman. My power is limited, his potencies are unlimited. I can make a swimming pool, God creates oceans. I can fly a rocket, but Lord floats huge planet. I can invent a dome light, God creates moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord made us all. Lord is the actual doer. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient, who deserves everyone's love and humble service. I am a tiny jiva cast in oceanic material world. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पोयम को हम एक बार जस्ट में इसको हिंदी में बताऊंगा जिससे लोगों को क्लियर हो सके। या कि हम एक छोटे से जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं, भगवान के अंश हैं। जैसे पेड़ के बहुत सारी पत्तियां होती हैं, सारी पत्तियां पेड़ का अंश है, उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। और भगवान को छोड़ के हम इस संसार में आते हैं, इस संसार में दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, दुख का संसार है, इसलिए इस संसार में हम दुख को प्राप्त करते हैं। और भगवान कृष्ण ही हमारे भगवान हैं, सब कुछ उनसे निकलता है, उनका स्वरूप सच्चिदानंद है, उनके उनके पास सारे ऐश्वर्य पाए जाते हैं। और भगवान कभी कभी इस संसार में आते हैं अपनी इच्छा से, केवल इसीलिए जिससे कि वो हमें अपने धाम में ले जा सकें, दुष्टों का विनाश कर सकें, भक्तों की रक्षा कर सकें और लीला कर सकें, इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं। मैं केवल आत्मा जो है वो ब्राह्मण कहलाती है, हम सभी ब्राह्मण हैं और भगवान कृष्ण जो है वो पर ब्रह्म है। हमारी शक्तियां लिमिटेड हैं पर भगवान की शक्तियां अनलिमिटेड हैं। हम छोटा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान समुद्र बनाते हैं। हम एक रॉकेट उड़ाते हैं पर भगवान बड़े बड़े लोग प्लैनेट्स, बड़े बड़े ग्रहों को उड़ाते हैं। भगवान वास्तविकता में डूअर हैं और हम उसकी कॉपी करते हैं। जैसे भगवान, जैसे अभी हमने पिछले में ही देखा कि हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान समुद्र बनाते हैं। तो भगवान वास्तविकता में डूअर हैं, हम उनकी कॉपी करने का प्रयास करते हैं। और भगवान हर जगह उपस्थित हैं, हर सब संपूर्ण शक्तिशाली हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान ही हमारे प्रेम और सेवा को डिजर्व करते हैं। हम इस संसार में गिरे हुए हैं, समुद्र रूपी संसार में गिरे हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सबसे ग्रेट हैं और उनकी सेवा करना चाहिए खुशी के साथ, जिससे हम वास्तविकता में खुशी होंगे और ये शरीर त्यागने के बाद अपने भगवान के धाम वापस जाएंगे। इसके बाद आता है, अगर कोई आत्मा का ज्ञान जानता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहला, ये बहुत आसान है क्योंकि स्लाइड में ही सब कुछ लिखा हुआ है, छह या सात प्रकार के बेनिफिट है आत्मा के ज्ञान से। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि आत्मा का ज्ञान अगर हमें है तो क्या फायदा उससे, ये उससे फायदा है। आत्मा के ज्ञान से हमें दैवी गुण डेवलप करने में मदद मिलती है और सारे राक्षसी प्रवृत्तियों को हम त्याग सकते हैं। जिससे जैसे जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो सोचता है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इंजॉय ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कौन दूसरे की केयर करता है, चाहे दूसरे लोग केयर क्राई रोए चाहे गुस्सा हो, जब तक मेरा काम चलता रहता है बाकी और किसी की जरूरत नहीं। परंतु जिसके अंदर अच्छे गुण है उसको पता होता है कि मेरे जो क्रियाकलाप हैं वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, इसलिए मुझे सभी को प्रेम करना चाहिए, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को छोड़ देना चाहिए, चिल्लाने की, दूसरे को हर्ट करने की, अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये आत्मा के ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा है शोक मोह भय से मुक्ति, लेमेंटेशन इल्यूजन एंड फियर, इससे मुक्ति। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो फेल हो जाता है तो सोचता है अभी तो मैं फिनिश हो गया, अब मेरे पिताजी तो मुझे कभी पढ़ाई नहीं करने देंगे, तो बेटर है कि मैं सुसाइड कर लूं। परंतु जिसके पास ये ज्ञान है वो सोचता है ठीक है मैं फेल हुआ, मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं इसको पास कर सकूं, और किसी के पास जाके मैं उससे हेल्प लूंगा और फिर मैं पास कर लूंगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट आता है। उसके बाद यूनिवर्सल ब्रदरहुड, चाहे कोई किसी भी शरीर में हो, किसी भी देश में हो, अगर हमें पता है कि हम आत्मा है और बाकी सभी भी आत्मा है, सभी भगवान के अंश हैं, तो हम सभी से संबंध डेवलप कर सकते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी डेवलप हो सकती है जब हम पिता को स्वीकार करें, अगर हमने पिता को स्वीकार नहीं किया तो ब्रदर तो होते ही नहीं। दो भाई तभी कनेक्टेड होते हैं जब पिता सेंटर में, तो चूंकि भगवान कृष्ण सेंटर में होते हैं इसलिए संसार में सभी जीव हमारे भाई होते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक जीव है, एक जर्मन है, व्हाइट ब्लैक, तो वो बोल रहे हैं कि आपके फोर फादर, हिटलर ने मेरे फोर फादर्स को मारा था, जीव्स को मारा था, परंतु मुझे आपसे कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान की कृपा से कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है जो कि इस शरीर रूपी कार के ड्राइवर है। तो आध्यात्मिक स्तर हमें यूनाइट करता है, और क्या हमें डिवाइड करता है, व्हाइट ब्लैक इंडियन पाकिस्तानी हिंदू मुस्लिम रिच पुअर एजुकेटेड इलिटरेट ब्यूटी अगली, शारीरिक चेतना हमें डिवाइड करती है, जबकि अगर हम आध्यात्मिक चेतना में रहें तो वो हमें यूनाइट करती है। इस तरह से जिंदगी का पॉजिटिव आउटलुक, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है वो कोऑपरेटिव रहता है और दूसरों को ब्लेम नहीं करता है, दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करता है, और सोचता है कि अगर मैं अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करूँगा तो मैं दूसरों से कैसे डिमांड कर सकता हूँ। पर जिसके अंदर ये आउटलुक नहीं होता वो दूसरे को सेल्फिश समझता है, सोचता है कोई मुझे मेरे साथ कॉपरेट नहीं करता, मैं अकेला हूँ, कॉर्नर कर दिया गया हूँ, और मुझे सेल्फिश बनना सीखना चाहिए, मैं दूसरे को गिरा के सीखूंगा। इसी तरह से अगला है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है वो जानता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, उसको पता है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है, और हमारी जो भी गंदे यादें हैं वो वास्तविकता में हमारे अनर्थ के कारण, शारीरिक चेतना के कारण, वास्तविकता में हमारा हृदय जो है वो प्रेम सुख शांति और दया से भरा हुआ है, मैं नाम जप करूंगा और अपने वास्तविक नेचर को निकाल के लाऊंगा, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उस व्यक्ति के पास। इसी तरह से संसार के रिसोर्सेस को भी ठीक तरीके से वो यूज करना जानता है, सोचता है देखो ये गाय कितना इनको दुख मिल रहा है, मुझे कुछ पैसे घास इनके लिए इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के पुत्र हैं सारे जीव, और उनके वो डिजर्व करते हैं कि जीवित रह सके, इसलिए मैं अगर अपने देश के कुछ लोगों को प्रीच करूंगा कि सब कुछ भगवान का है और सभी को उसमें शेयर मिलना चाहिए, संसार में कोई गरीबी नहीं रहे। इसके अपोजिट जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि संसार की सारी दौलत मेरे पास होनी चाहिए, स्विस ने इतना पैसा रख लिया मेरे कोई चिंता नहीं। तो ये हैं बेनिफिट्स, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सोल अवेयरनेस इन अवर लाइफ, अच्छे गुणों को डेवलप करना और राक्षसी गुणों से बचना, शोक मोह भय से बचना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जीवन का पॉजिटिव एटीट्यूड, मंत्र मेडिटेशन सीखना और रिसोर्सेस को ठीक तरीके से यूज करना। तो ये आत्मा के अध्यात्म आत्मा के ज्ञान का प्रैक्टिकल बेनिफिट है। तो ये हमने डिस्कस किया, लेसन कंप्लीट होता है इसके बाद। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम नेक्स्ट सेशन का ट्रेलर देखते हैं। नेक्स्ट सेशन का ट्रेलर इसमें आता है, आपको आना चाहिए शायद। अगला सेशन है सब्सटेंस एंड शैडो, आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार। आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना दोनों का कंपेरिजन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन सब्सटेंस इन साइड। ओके तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं।
तो एक एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं क्या समझा।
डिस्कस करने के लिए लोगों को बोलने के लिए तैयार होना
चाहिए।
पर बोलते नहीं या तो सभी लोग साई हैं बहुत या तो सब कुछ समझ में आया नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं बोलने का यही मीनिंग है। ओके आप स्टार्ट करिए शिवानंद। एक पॉइंट आप बताइए।
हाँ जैसे पहला प्रूफ पुनर्जन्म के बारे में बता रहे थे जैसे कैसे लड़की जो है अपने ससुराल जो उसकी पूर्व जन्म में जो ससुराल थी वहां पे वो गए हुई थी और उसने अपने ससुर को देख के प्रणाम किया था। यहाँ से पता चलता है कि जो पुनर्जन्म है ये कोई मतलब साइंस ऐसा कोई प्रैक्टिकली मौजूद है जो साइंटिफिकली प्रूफ भी है।
नेक्स्ट पॉइंट
सर जिसमें आपने ये भी बताया था कि जो आदमी जैसा सोचते हैं तो उनका वैसे ही जन्म मिलता है। जैसे आपने एक वीडियो देखा था कि जो ज्यादा दिखावा करते हैं कपड़े कम पहनते हैं उनको पेड़ बनते हैं, जो ज्यादा मांस खाते हैं वो मांस खाने वाले जानवर बनते हैं।
और कुछ
और आपने पाप कर्म के बारे में बताया था, मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स के बारे में।
ओके धर्म धर्म अधर्म के चार खंभे पिलर्स ऑफ सिंपल लाइफ। और कोई पॉइंट।
धर्म के चार हैं सत्य दया स्वच्छता तपस्या।
हाँ सत्य दया स्वच्छता और तपस्या। आपको ये पता है याद है कि धर्म के कौन से खंभे टूटते हैं इन चार चीजों से। मांस खाने से क्या टूटता है।
मांस खाने से दया।
मांस खाने से दया। ओके जुआ खेलने से
सत्य
सत्य। ओके और इलिसिट सेक्स। हाँ
स्वच्छता से
स्वच्छता। और कौन सा बचा।
तपस्या से।
तपस्या से क्या टूटता है। सत्य दया सोच तपा। तपस्या नशा करने से टूटती है। ओके और कोई पॉइंट मुकेश पे कोई पॉइंट बताएंगे। ओके जयदेव प्रभु कोई पॉइंट बताएंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु
जैसे कि आपने बताया कि सपोज इंफॉर्मेशन लीड्स टू थॉट इन थॉट लीड्स टू आर कर्मा इन कर्म डिजाइन रिपीटेशन कर्म डिजाइन संस्कार इन इसी संस्कार से हमारी जन्म मृत्यु डिसाइड होती है कि हम अगला जन्म हमको मतलब किस टाइप का मिलेगा किस टाइप की लाइफ हम लीड करते हैं उसी टाइप की हमको बर्थ मिलती है।
आप अगला जन्म कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं।
अगला जन्म
ऋतिक रोशन।
नहीं 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 बिल्कुल नहीं।
कौन सा।
एक अच्छा ज्ञान हमारे पास मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है हमारे पास शरीर कोई भी मिले स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए।
ओके प्रयास करिए कि आध्यात्मिक शरीर मिले भगवान के धाम में चले जाए।
हाँ प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी।
हाँ
जैसे कि आपने बताया दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ गॉड तो हम कैसे इंडल्ज हो जाते हैं बैड हैबिट्स में।
आप बताइए आप भी तो भगवान के अंश हैं आपको पता होना चाहिए कैसे हो जाते हैं।
हमारे हिसाब से तो इसका मेन वी कैन से द क्रक्स जो है क्रक्स पॉइंट दैट इज इंफॉर्मेशन. अगर अच्छी इंफॉर्मेशन लोगे आप तो अच्छे थॉट्स बनेंगे, जब अच्छे थॉट्स बनेंगे तो कर्म अच्छे बनेंगे, जब कर्म अच्छे बनेंगे तो सारी चीजें अच्छी होती चली आएंगी. हमारे हिसाब से तो यही पॉइंट जो हमने
एक्चुअली एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, उस प्रकार के संस्कार बनते हैं. अगर बचपन से हमारा संग अच्छे लोगों के साथ है तो हमारा अच्छा संस्कार होगा, तब फिर हम पाप की तरफ नहीं जाएंगे. ओके
हाँ, तो अच्छे लोगों के साथ रहने का मतलब ही तो यही हुआ ना कि अच्छे लोगों के साथ रहने का मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलना.
इसीलिए आप हमेशा शिवम प्रभु के साथ रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, तो अच्छे संस्कार मिलेंगे आपको.
बिल्कुल 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 प्रभु जी.
ओके
हरे कृष्ण प्रभु जी.
प्रभु हरे कृष्ण.
जय मिन प्रभु.
प्रभु ये चार टॉपिक आपने बोला था वो आप रिपीट कर सकते हो, मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुआ था इसलिए.
चार टॉपिक मतलब कौन सा?
अभी जो आपने पहले टॉपिक में बात की थी वो चार
धर्म के चार
चीजें मिलने से इसका त्याग होता है. हाँ,
धर्म के चार खंभे सत्य होते हैं, सत्य दया शौच तप. शौच मतलब स्वच्छता, तो सत्य दया स्वच्छता और तपस्या. और चार पाप के खंभे होते हैं, मांसाहार, अवैध स्त्री पुरुष का संग, जुआ और नशा. तो सत्य बोलना जुआ खेलने से टूटता है, नशा करने से तपस्या टूटती है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध करने से स्वच्छता का विनाश होता है, और मांस खाने से दया का विनाश होता है. ओके
ओके थैंक यू प्रभु.
ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेशन सब्सटेंस इनसाइड. गुरु से प्रभुपाद.